to go through half.
How are my sons? ऐसा कभी उन्होंने पूछा नहीं, नंबर में फोन था है कि नहीं।
वो छोड़े तो छोड़े, मन से ही स्मरण नहीं थे। जैसे मन त्यागता है आदमी, तो मन से ही नहीं सोचता है इसके बारे में कि कोई सोचता होगा। और यदि याद कर जाए तो छूठे निकलती है मुख से, कभी स्मरण भी हो जाए तो है कि नहीं।
तो फुटकार आती है निष्ठी बनल जाए थे, थूक आती है याद करने।
राजर्षि भरत को एक तो याद ही नहीं आया तो त्याग है। अच्छा, त्याग में और विशेषता है मल त्यागने में, कि मल त्याग करके ही सुख मिलता है, नहीं त्यागने में ही कष्ट होता है कि नहीं। लेकिन दूसरे राजा जो त्यागते हैं तो त्यागने में मर जाते हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ इन बच्चों को देखना, सुख से रहना, मैं क्या करूं, भगवान का भजन करना ही चाहिए, इसलिए जा रहा हूं। तो बहुत मिल करके जाते हैं, कर्ज भर सौंप करके जाते हैं। लेकिन आप बताइए, कोई शौच करता है तो क्या सोचता है, क्या करूं, शौच होना पड़ेगा। नहीं, वो उत्कंठित रहता है जितना जल्दी शौच हो जाए, है कि नहीं, और अच्छी तरह से हो जाए, जितना जल्दी हो जाए अच्छी तरह से हो जाए। तो अगर से भारत ने इस तरह से त्याग किया था, राज्य उनके लिए भार जैसा हो गया था, स्त्री काल जैसा लग रही थी, पुत्र आदि सब बेकार लग रहे थे, इतनी भगवान में लालसा हो गई। यहां लिखा जाए उत्तम श्लोक लाओ सब। जो त्याग किए तो दुख समझकर त्याग नहीं किए, उनको इतनी कृष्ण की लालसा थी कि उस लालसा से त्याग किए, छूट गया घर द्वार सब। जैसे चैतन्य महाप्रभु नवदीप छोड़े तो नवदीप को दुख में समझकर नहीं छोड़े, या देवता चार्ज को छोड़े, श्रीवास को छोड़े, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को छोड़े, तो उनको दुख रूप समझ करके नहीं, कृष्ण के लिए इतना पागल हो रहे थे कि इनका स्मरण ही नहीं आ रहा था। घर द्वार और नवदीप के सुख का स्मरण ही नहीं आ रहा था। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, यही कहकर के भागते थे। तो ये दशा थी राजर्षि भरत। उत्तम श्लोक लालसा, इन्होंने राज्य को छोड़ा, स्त्री पुत्र को, सबको, तो मल की तरह छोड़ा। इसमें कई सब कई भाव है कि ऐसा छोड़ा कि सपने में भी नहीं देखा फिर उनको। क्या संभव है किसी के लिए? मन से तो जरूर है, वो सोच देगा, अरे एकांत में लेटर भी लिख करके किसी से भेज देगा, पता ना चले, और वनप्रस्थ लेने पर भी, सन्यासी होने पर भी ऐसे देखा गया। क्या कोई त्याग करेगा इस तरह से? और ही पूरे राज्य का, राज्य सुहृद, सुहृद का अर्थ होता अपने मित्र बंधु बांधव, उनका संग छोड़ना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन है संग छोड़ना। ये सब छोड़ दिया और सबको मलवत छोड़ दिया, कभी याद नहीं किए सपने में, त्यागने में उनकी उत्सुकता थी। इसी बात को पुनरुक्ति जैसा गाती थी जनता, इस त्याग का इतना महत्व था कि अब दीर्घ श्लोकों में जनता गाती थी। यो दुष्टजन क्षति सुत सुजनार्थ दाराम राख्याम श्रियम सुरवरी सदयावलोकाम नैचन ऋतस्तुचित तद उचित महता मधु दे सोवानुरक्त मनुष्य भवो। फिर उसी को कह रहे हैं, जो दुष्टेज क्षिति संपूर्ण पृथ्वी को, पुत्रों को, स्वजनों को, धन को, अपनी पत्नी को और स्त्री को, धन को, सबको छोड़े, जिस धन की अभिलाषा इंद्रादि देवताओं को भी होती है, इतना अच्छा धन था, बड़ा धन था, शुरू करें प्रार्थना, वो लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमको ऐसा धन दीजिए ऐसा, लेकिन उस धन को उन्होंने मल की तरह छोड़ दिया। लक्ष्मी जी चाहती थी, कृपा कटाक्ष करती थी उन पर, सोचती थी कि नहीं भरत तुम वन में मत जाओ, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है, इसको सुखाओ मत, वन में मत जाओ, लेकिन लक्ष्मी की प्रार्थना को भी ठुकरा दिया। नहीं, मतलब सारा धन वैभव जनता कहते थे कि आप मत जाइए मत जाइए, लेकिन कृष्ण के लिए चलो ही गए। जो राज छोड़कर जा रहे थे तो सारा
जन समाज रो रहा था, पत्नी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, आपको क्या आवश्यकता है पद में जाने की, आप यहाँ ही भगवान के परम भक्त हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, भोगों में तो है नहीं, लेकिन छोड़ ही दिया, छोड़ करके चले गए। निक्षण मृत, वो राजा थे लेकिन मैं इच्छा, राज की इच्छा नहीं किए, स्त्री की इच्छा नहीं किए, तो महाराज परीक्षित चकित होने की अरे बात की बात, ऐसा क्या तब स्त्री कहते तब उचित है, यह उचित है महाराज, यह युक्त है, यह उनके स्वरूप के अनुरूप है, क्योंकि महाता मधुगुट सेवानुरक्त मनसा, जो मधुसूदन भगवान के सेवा रस में मग्न हो जाते हैं, जो उनके रूप रस आदि का चिंतन करते हैं, नाम जप आदि करते हैं, जिनको कृष्ण का मधुसूदन का रस मिलने लगता है, उनके लिए अभव है फल को, अभव मतलब मोक्ष मुक्ति, उनके लिए मुक्ति का सुख भी फल गुप्त हो जाता है। अब फिर इस पृथ्वी का सुख और स्वर्ग का सुख क्या करेगा, जो भगवान मधुसूदन के भक्त हो जाते हैं उनके लिए यह मोक्ष भी मुक्ति भी, जो इस जगत के सुख से करोड़ों गुना अधिक सुख है, वो अभी फलगु हो जाता, तुच्छ हो जाता। तो फिर लोग उनके लिए बिल्कुल उचित बात थी, क्योंकि भगवान कृष्ण मनोरक्त थे। फिर ये श्लोक प्रसिद्ध है, ऐसे हजारों श्लोक राजर्षि भरत के विषय में थे, उसमें से कुछ श्लोक दिए गए हैं। जग आए धर्म पते विभिन्न पुराया, योगाय सांख्य सुरसे प्रकृतेश्वर आया, नारायण हरे नमितिवार भाष्य मृगत्वमपिया समुदा जहारा। जब राजर्षि भरत थे या जब भरत जी जब बने, उस समय भगवान का कितना कीर्तन किए होंगे, कितना गुण गाए होंगे। अरे जब वे हरि थे तो हरि का शरीर छोड़ते समय उन्होंने यह कीर्तन किया था, लेकिन हास्य मृगत्वम अपि, मृग शरीर छोड़ते समय भी इस तरह भगवान कृष्ण का कीर्तन किए थे। वहां पर उसका वर्णन नहीं आया था, यहां वर्णन आ रहा, भगवान का गुण गाते हुए शरीर छोड़े क्या बोले थे उस समय, यज्ञाय, यज्ञ को प्रणाम है, यज्ञ है विष्णु, भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ, इसका अर्थ यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ स्वरूप भोक्तारम यज्ञ तपसा, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, सबके समस्त शुभ कर्मों का फल देने वाले आपको प्रणाम कर रहा हूँ।
अच्छा,
दूसरा शब्द बोले थे धर्म पता है, हे धर्मपति आपको नमस्कार है, अवतार लेकर के आप वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, तो धर्म के पालक हैं उनको धर्मपति कहते हैं, यह कहा था उन्होंने मृग शरीर में। और विधिमय प्रणाया, विधि मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के भीतर जो भी निपुणता है, सृष्टि करने की दक्षता है, वो आपने दिया है, ब्रह्मा जी को भगवान ने पढ़ाया था संकल्प मात्र से, और इसीलिए ब्रह्मा जी इतने दक्ष हो गए, एक्सपर्ट हो गए सृष्टि करने में। तो जो ब्रह्मा जी को भी निपुणता दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और योगाय जिज्ञते इति योग, जो भक्तों को अपनी ओर लगाते हैं उनको योग कहते हैं, अपने भक्तों को अपने सौंदर्य माधुर्य से खींच लेते हैं, संसार बंधन उनका खत्म कर देते हैं, ऐसे योग को प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। सांख्य सिर से, सिर सिर का अर्थ है सार, आप सांख्य के सार हैं, मतलब उसके प्रतिपाद्य हैं, सांख्य योग के आप प्रवर्तक हैं, भगवान कपिल देव के रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रकृति स्वर आया, आप प्रकृति के ईश्वर हैं। नारायण आया, आप समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, इसीलिए आपको नारायण कहते हैं। हरे, अपने भक्तों का शरणागतों का क्लेश हर लेते हैं, इसलिए आप हरि हैं, ऐसे हरि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और ऐसा कहते हुए शरीर छोड़े, मृग का शरीर, और मरते समय छोड़े थे, दिवस अवस्था में बढ़िया से उच्चारण किए थे, उदाहरण का अर्थ उच्चारण करना, और सम उत आजहारा, बहुत जोर से बोले थे, उच्च स्वर से बोले थे, मृग का शरीर छोड़ते समय हरे कृष्णा। तो जो मृग शरीर में भी इस तरह भगवान का गुण गा सकता है, और उसके लिए मानव शरीर में क्या कहना है,
मृगत्तम हासन अति हासन मतलब त्याज्य मृग का शरीर छोड़ते समय भी उन्होंने एक गीत गाया था भगवान का जस गाया था। इसलिए सिद्ध होता है कि भगवान का कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। ये सिद्ध हुआ जहां रहो वहां भगवान का जप करे उच्चारण करे चाहे श्लोक या महामंत्र कुछ बोलते रहो यही है भक्ति रास्ता। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज भारत के चरित्र का उपसंहार करते हुए कहते हैं अब भरत चरित श्रवणादि फलम आह। राजा से भरत के इस चरित्र को सुनने का कहने का और अनुमोदन करने का क्या फल होता है इसको कह रहा है। इसको शुरू नहीं कहना चाहिए था कह ठीक है यह मैंने जो कोई भी मनुष्य या जीव कोई इसमें क्वालिफिकेशन नहीं लिखा गया और न तो यह लिखा गया है कि श्रद्धा से सुने या श्रद्धा से कहे। कोई भी व्यक्ति इदम भरतस्य अनुचरितम कोई व्यक्ति जो राजर्षि भरत के इस अनुचरित को जिन्होंने भक्ति किया राज त्यागा भजन किया इसको कोई सुनता है इसको कह रहे हैं अनुश्रणोति जो सुनता है और आख्यास्यति जो इसकी का व्याख्यान करता है प्रवचन करता है अभिनंदति और यदि कोई अनुमोदन करता है तो उसकी सारी कामनाएं भगवान पूरी करते हैं आत्मा हमारे परमात्मा उसकी सारी आशीष कामनाएं भगवान के द्वारा पूरी हो जाती है। मेरा कांचना पड़ता ही थी अन्य किसी से उसे कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है परत दूसरे से कुछ नहीं मांगना पड़ता और अगर से भरतस्य अनुचरितम तो अमृत आख्यान विशेष करके जो जगभरत जी के रूप में उन्होंने उपदेश किया है अवचरित किया है राजर्षि भरत के शरीर से तो इसको उनका अनुचरित कहा गया। यह कैसा है स्वस्तैनम स्वस्तैनम अनुचरितम वह सब प्रकार का मंगल देने वाला है। यदि कोई चाहता है कि हमारे जीवन में मंगल हो तो उसे सुनना चाहिए कहना चाहिए और अनुमोदन करना चाहिए। इसके तीनों कहते हैं अनुश्रणोति आख्यास्यति अभिनंदति ये वर्तमान काल में कह रहे हैं कोई भी करता है किसी भी समय करता रहेगा तो सुअस्ति शोधन सत्ता उसको मिलेगी मंगल मतलब अच्छा से जिएगा सुखपूर्वक और परलोक में भगवान को धाम में जाएगा। ये अर्थ स्वस्ति का ही अर्थ होता है आयुष्य और इस प्रसंग को सुनने वाले कहने वाले और अनुमोदन करने वाले की आयु बढ़ेगी। महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद देने जैसा कह रहे हैं श्रोता पर वक्ता पर और अभिनंदनकर्ता पर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद है सुखदेव गोस्वामी का यह कोई अर्थवाद नहीं है। आयुष्यम इससे आयु बढ़ेगी निश्चित जो लोग भागवत सुने हैं इस प्रसंग में बोले ऐसे ही अमृत है कि नहीं हम ऐसे ही अमृत किए हैं तो आयु तो बढ़ेगी इसमें संदेह नहीं है और सुन करके कुछ नियम ले लेंगे सवेरे उठेंगे तो ऐसे भी आयु बढ़ जाए इस प्रसंग को सुनने पर आयु बढ़ेगी और धनम धन बढ़ेगा धन भी बढ़ेगा भगवान किसी न किसी उपाय से धन बढ़ाएंगे विश्वास रखना चाहिए मनुष्य इसको सुनने से धन बढ़ता है जसस्य जस बढ़ता है कीर्ति बढ़ती है बड़ा से बड़ा आदमी काम करता है लोक में उसको कीर्ति प्राप्त होती है स्वर्ग वर्गम च और यदि वो चाहता है स्वर्ग तो स्वर्ग मिलेगा और यदि वो चाहता है वैकुंठ तो वैकुंठ मिलेगा। अब क्या चाहिए इस लोक में भी धन आयु और परलोक में स्वर्ग और वैकुंठ मिलेगा क्या बाकी रहा किसको मिलेगा यह अनुश्रणोति आख्यास्यति अभिनंदति उसको ही मिलेगा। आत्मना एवं सर्व आशीष आशास्ते भगवान से ही आत्मा से ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। न परतक कांचन इति, दूसरे किसी से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मांगना पड़ेगा, उसे सब कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार इस अमृत सत्ता महोत्सव का सुखदेव को स्वामी स्वयं ही अभिनंदन कर रहे हैं, या अनुमोदन कर रहे हैं। तो अधिक इसकी क्या व्याख्या करनी है, सभी समझ ही रहे हैं। इस प्रकार यह अमृत महोत्सव संपन्न हुआ, समाप्त नहीं हुआ, संपन्न हुआ। या समाप्त हुआ तो उसका भी अर्थ है अच्छी तरह से प्राप्त हुआ। हमें बहुत आनंद आया, आप लोगों ने हमको सौभाग्य दिया राजर्षि भरत के साथ रहने का। 7 दिन तक हमारा मन लगा रहा उनके साथ रहा। मैं तो पढ़ता था, जब कथा बंद रहते थे उस समय भी मैं पढ़ता था, चौधरी जी के आश्रय में जाकर पढ़ता रहता था। जब भागवत सत्ता कहना होता है तो ये मुझ पर बहुत बड़ी कृपा भगवान के भक्तों की होती है कि मैं कहने के लिए भी पढ़ता रहता, जिसको पढ़े कई साल हो गए थे। तो अब फिर नहीं पढ़ते तो कहते कैसा, वैसे मन लगा कहने में लगा, और कहने वाले को भी वही आशीर्वाद सुखदेव गोस्वामी दे रहे, सुनने वाले को अभिनंदन करने वाले। तो इसमें आपने सुना है, हमने कहा है, और अभिनंदन तो बहुत मुख्य है। अनुमोदन का अर्थ केवल वाणी से कहना ही अनुमोदन नहीं होता। जो भी व्यक्ति इस भागवत सप्ताह में सहायता किए हैं, इसके संपादन में, आयोजन में धन खर्च किए हैं, या अपने पुत्र को अपनी पत्नी को लगाए हैं, बहुत से लोग ऐसे लगाए हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा अनुमोदन है। अनुमोदन का अर्थ है सहारा देना, खुशी व्यक्त करना। हाँ, यह काम अच्छा है, मैं इसमें इतना धन दे दूंगा, लगाऊंगा, इसको अनुमोदन कहते, बहुत बड़ा अनुमोदन। अनु का अर्थ होता है बारम्बार, और मोदन का अर्थ होता है अपना मोद, अपना अपनी प्रसन्नता प्रकट करना। कोई ये काम कर रहा है तो इतना ही कह दे कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, केवल इतना ही दो आदमी से कहे तो ये भी एक अनुमोदन हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है, अपनी खुशी व्यक्त करे, अभिनंदन करे। तो धर्म द्वारा, बुद्धि द्वारा, आयोजन द्वारा इस तरह से अभिनंदन किया जाता, आग्रह करना। इस भागवत महोत्सव को करने में बहुत आग्रह करना पड़ा। तो ये सब बातें आयोजकों को मालूम है, होना ही चाहिए, क्योंकि संसार जो है भक्ति के विरुद्ध है, पूरा संसार। ये आयोजन होना चाहिए। अभी आज एक बहुत बड़ा अभिनंदन हुआ, दुखी नंदन प्रभु और ये चौधरी जी, मदन जी और गर्ग जी कमेटी बनाना चाहते हैं, सबसे महा अनुमोदन कर रहे थे। यही सबसे बड़ा अनुमोदन है कि आगे अब कथा होनी चाहिए, आगे प्रचार विशाल पैमाने पर होना चाहिए, ये महा अनुमोदन है। उसमें जो भी सहायता करेंगे, रहेंगे, सहयोग देंगे, सुनेंगे, कहेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, प्रसाद खाएंगे, ये सभी अनुमोदन के अंदर है। अपनी खुशी व्यक्त करनी चाहिए, आना चाहिए, घूमना चाहिए। तो आप लोगों ने इसमें बहुत सहयोग किया, मैं तो केवल बोला, बचने की दरिद्रता इसमें कौन दरिद्रता है, मैं बोल रहा हूँ। बाकी जिन्होंने किया है वास्तव में, अपना धन लगाया है, शरीर लगाया है, वो लोग बहुत अधिक पुण्य के पात्र, इसमें संदेह नहीं। तो मैं सभी लोगों का आशीर्वाद धन्यवाद देता हूँ कि भगवान में उनकी मति लगे रहे। और आगे मैं यहाँ के व्यवस्थापकों से, राधारस बिहारी के पार्षदों से प्रार्थना करता हूँ कि आगे जब भी आयोजन हो और कोई भी व्यक्ति यहाँ 7 दिन रहना चाहे तो उसके लिए आवास और प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति वह एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य होगा। वास्तव में उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी और उनके लिए प्रसाद की तो बहुत अच्छा है। उनको जाने में ट्रेन में इधर उधर बहुत धक्का होता है, बम्बई का एक कीर्ति सबको मालूम है,
बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जो इसमें हेल्प करे, सहायता करे, तो निश्चित यह भी बहुत बड़ा अनुमोदन होगा। तो ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत सुख दिया, अमृत दिए और हमें पिलाए, इसके लिए मैं आपका चिरऋणी हूं। और बार बार भक्तों ने मुझसे प्रार्थना किया कि बार बार बॉम्बे आइए, बॉम्बे आइए, बॉम्बे आइए। तो वास्तव में जहां स्नेह होता है, श्रद्धा होती है, वहां आदमी का पैर अपने आप चला जाता है। तो प्रसंग बता रहा है कि जब भरत जीवन में कभी नहीं बोले थे, लेकिन जब जो के श्रद्धालु व्यक्ति मिल गया तो उनको बोलना ही पड़ा। तो जहां स्नेह होता है वहां आदमी आता ही है। आप लोगों का स्नेह रहेगा, श्रद्धा रहेगी, तो भगवान हमारे हृदय में प्रण करेंगे ही, लाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल आपका सेवक हूं, प्रस्तुत हूं। अरे चले भागवत महोत्सव, सबका कल्याण हो, यही कामना है। और एक और मैं विनय करना चाहता हूं कि हमारे प्रवचन में कभी कभी कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग हो रहा था तुरंत मार्ग पर। खास करके हमारे लोग शिकायत करते हैं कि आप स्त्रियों की बहुत पिटाई करते हैं, लेकिन ऐसा मैं करता नहीं हूं, देखने में लगता है वास्तव। मैं कैसे ऐसे कर सकता, इसमें तो अधिकांश स्त्रियां ऐसी हैं जो जिनके लिए मैं पिता के समान हूं, है कि नहीं। मैं उन बच्चियों पर कैसे आघात करूंगा, ऐसे कठोर शब्द बोलूंगा, लेकिन कुछ शास्त्र की ऐसी शैली है कि सत्य बात कठोर भी लगे बोलना चाहिए। तो अपनी ही बेटी अपनी बहन के लिए कैसे कोई इस तरह का कठोर शब्द बोल सकता है, लेकिन जीवन में आवश्यक है देखने के लिए। तो मैं ऐसा समझ करके बोला हूं, फिर भी यदि किसी को ये दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी भाषा को सॉफ्ट करूं, कोमल करूं। मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई है उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूं। विशेष करके मैं श्री चौधरी जी का चिरऋणी हूं, जिनके सत्प्रयास से यह संपन्न हुआ कार्य। और इसके साथ ही साथ श्री मदन जी, हर गर्ग जी, गोकी नंदन प्रभु और जियाजी लाल, पायल सिंगल, श्रीमती पायल सिंगल और चंद्रावली जी और तो कुछ हमारे शिष्य हैं, उनको आशीर्वाद देना, धन्यवाद देना तो अपने को ही देना हो जाएगा, है कि नहीं। अब ऐसे सब तो शिष्य ही है, सभी शिष्य है, भाई है, इसमें संदेह नहीं है। तो फिर भी मैं इनका नाम बोल लेता हूं, दिव्य कृष्णदास, वीर कृष्णदास, हरिदास, मिताई जी, उत्तम श्लोक, नीला बंसाली, नरहरि, पंचरत्न दास, परंपरा दास, आत्रेय ऋषिदास, अशोक कृष्णदास और तमाल कृष्णदास। इस तरह से मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, सभी हमारे हृदय में है। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि चौधरी जी से चालू करके और सबकी मत कृष्ण में लगी रहे। हरे कृष्ण।
जो और कहीं महाराज को न देखकर के सिर्फ बंबई में बैठने की बात कर रहा हूं। ऐसा है परीक्षित महाराज, तो जो कुछ भी सुखदेव गोस्वामी संस्कृत भाषा में श्लोक के रूप में बोलते थे उनको तो तार लेते थे, मतलब उनको तो वो पता चल जाता था। लेकिन हम लोग इतने अबुद हैं, हम लोग इतने अरूढ़ हैं कि एक एक श्लोक के एक एक शब्द का विश्लेषण करने के बाद भी माला का जप नहीं करते। अभिभूत कितने गए बीते हैं। तो महाराज से यही निवेदन है कि यदि इनके मुख से पूरी भागवतम अगर सुनने मिल जाए और उसके लिए तो जैसे ही 7 दिन के सप्ताह वगैरह होते हैं और ठिकाने अब तो सिर्फ एक भरत महाराज का जो अंश है भागवतम का उतना ही सुनने में अगर एक हफ्ता लग जाता है तो यदि पूरी भागवत सुनने मिल जाए चलो अलग अलग टुकड़े में ही सही रस के तो एक कुंडा तो नहीं होता थोड़े थोड़े आश्वादन भी मिल जाए तो पास है। महाराज से यही मेरा निवेदन है कि ऐसा वो कूट कूट करके पिलाते हैं ना बड़ी अच्छी लगती है अगर वो गलत बोलता हो तो माफ कीजिए तो इनसे यही निवेदन है कि ये प्रसंग बार बार हो और भागवतम का रसपान मुंबई निवासी भक्तगणों को इसका लाभ मिलता रहे ऐसा अवश्य करें। और जैसे चौधरी साहब ने अभी बताया यहाँ पे अभी भी कुछ वानर हैं, प्रभु जी वानर कोई नहीं है, ये सारे जो हैं भक्त हैं, भक्त हैं, वरना यहाँ कौन बैठता। अरे कितने प्रोग्राम चलते होंगे, कहाँ कहाँ क्या होता होगा, अगर उन्होंने हाथ नहीं उठाया तो अपना मान न बढ़े इस संकोच से, यानी वे अमानी ना मान देना, इस प्रकार के लोग हैं, ये सारे भक्त हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की जय।
उमिलंग सुजानंदन सदातया चक्षुरुन्मीतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीन बंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, भक्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरो वश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं आपको कुछ टाइम लूंगा। राजा भोज के व्यवहार में 3 कवि रहते थे, तो तीनों अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। तो राजा भोज ने एक बार अनाउंस किया कि जो हमारे दरबार में नया श्लोक बना के लाएगा मैं उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो पहले विद्वान लोग नया नया श्लोक बना के लाते थे, तो जो पहला विद्वान था वो एक बार सुन के याद कर लेता था, और जो दूसरा विद्वान था वो 2 बार सुन के याद कर लेता था, और जो तीसरा विद्वान था वो 3 बार सुन के याद करता था। तो जैसे कोई नया विद्वान आया और वो श्लोक पढ़ता था तो पहले वाला बोलता था महाराज ये श्लोक तो मेरे को पहले से याद है। जब उसने एक बार पढ़ा तो 2 बार हो गया, तो दूसरा बोला महाराज ये भी मेरे को याद है, और तीसरा बोला ये भी मेरे को याद है, उसने 3 बार सुन लिया। तो मैं सोचता था कि कुछ बोलो यहां पर अनुमोदन के रूप में, लेकिन पक्रेश्वर प्रभु ने और अद्वैतानंद प्रभु ने ऐसा कोई बोल दिया कि मुझे नहीं फिर क्या हुआ सुना अच्छी तरह मैंने कहा। तो एक दिन क्या हुआ, राजा भोज के व्यवहार में कालिदास कभी रहते थे, और वो राज्य से भाग गए और वो गरीब ब्राह्मण के घर में रहते थे। तो वो गरीब ब्राह्मण बोला महाराज मैं जब भी दरबार में जाता हूं और वो मेरे को बोलता है कि ये श्लोक मेरे को याद है। तो कालिदास जी ने एक ऐसा श्लोक लिख के दिया, उसका अर्थ ये होता था कि राजा भोज के व्यवहार में 3 कवि रहते हैं, पहले वाला 1 बार सुन के याद करता है, दूसरे वाला 2 बार सुन के याद करता है, और तीसरे वाला 3 बार सुन के याद करता है। तो तो उस दिन उन्होंने कहा हमारा जो श्लोक हमको याद नहीं है क्योंकि उनकी पोल खोलने वाली थी। तो ऐसे मैं सोचता था कुछ स्पेशल भोजन रहा तब से, लेकिन मुझसे पहले यहां बड़े बड़े भक्त बड़े नम्र भाव से अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा ताकत लगाता हूं। रूप गोस्वामी विगत माधव नाटक में लिखते हैं कि शुभानाम चांदनामपि मधुरमोन नाग गमनी भगवानाम राजाजी प्रणय घन सारे सुरभिताम समन्ता संतापोदगम विषम संसार सहने प्रणीतां ते तृष्णा हवतु हरि लीला शिखर। जो भागवत कथा है राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं जो भागवतम में और उनके भक्तों की जो कथाएं जैसे महाराज भरत की कथा महाराज जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत की, ये कथाएं कोई कथाएं नहीं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसे किसी रेगिस्तान में कोई आदमी गर्मी से झुलस रहा है और उसको पानी